नमस्कार, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय श्रोताओ, इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से दूसरी पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है निर्गमन। हम आशा करते हैं कि इस पुस्तक से आपको आत्मिक लाभ मिलेगा। तो आइए, अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले आइए सुने ये मधुर गीत।
सच बतला दे तेरे मन में रात ये कैसी छाई, सच बतला दे तेरे मन में रात ये कैसी छाई। अच्छा नहीं है देख संभल जा, यीशु से है जुदाई। यीशु को अपना, यीशु को अपना, ख्वाबों में जो खोया है जाग जरा मतवाले, ख्वाबों में जो खोया है जाग जरा मतवाले।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में आपको मेरा नमस्कार मिले। मित्रों, मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी प्रभु की दया से सुरक्षित और भले चंगे होंगे और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आपको बता दूं कि पिछले अध्ययन में हमने कुछ मुख्य विषयों को देखा था। इसराइलियों का कुड़कुड़ाना क्योंकि उन्हें भोजन की कमी थी, परमेश्वर के द्वारा मन्ना और बटेर का प्रबंध करना, मन्ना का गिरना और इकट्ठा किया जाना और इसराइलियों को सप्त का दिन दिया जाना आदि विषयों को देखा था। आज हम देखेंगे कि इसराइली फिर से कुड़कुड़ाते हैं और इस समय वे रपीदीम में पानी की मांग कर रहे थे। परमेश्वर मूसा को होरे पर्वत में चट्टान से पानी निकालने के लिए भेजते हैं। हारून और हूर मूसा के दोनों हाथों को थामते हैं और इसराइली अमालेकियों पर विजयी होते हैं और मूसा यहोवा निसी के लिए एक वेदी बनाता है। मित्रों, इन्हीं विषयों पर हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं। तो कृपया आप अपनी बाइबल और नोट अवश्य तैयार रख लें, ताकि हम इन महत्वपूर्ण बातों को सीख सकें। आगे बढ़ने से पहले आइए हम परमेश्वर से सहायता मांगे और प्रार्थना करें। हमारे जीत और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, जिसे आपने हमें फिर से एक बार दिया है, ताकि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सके। इस वक्त जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के लिए, जो किसी प्रकार से दुखी और निराश हैं, चिंता और परेशानी में हैं, अशांति में हैं, परिवार बिखरे हुए हैं, टूटे हुए हैं, प्रॉब्लम्स हैं। हमारी विनती है प्रभु कि आप प्रत्येक को अपनी शांति दे। इन वचनों के द्वारा आप उनके हृदय से बातचीत करें, ताकि वे आपकी महानता, आपकी सच्चाई को अपने जीवन में ग्रहण कर सकें। इस अध्ययन को हम हरेक को आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, हम देखते हैं कि इसराइली मिस्र देश को छोड़कर एक निर्जन प्रदेश की यात्रा पर हैं, और वे सीनै पर्वत की ओर यात्रा में हैं, और रास्ते में उनके ऐसे 7 अनुभव हुए जो हमारे मसीही जीवन को भी चित्रित करते हैं। पहला कुरिन्थियों के पत्र 10 अध्याय उसके 11 पद में लिखा हुआ है, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। मित्रों, यह सभी मसीहियों के लिए है कि वे इसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इनकी शिक्षाओं पर ध्यान देंगे। ये शिक्षाएं हमें एक दृष्टांत या उदाहरण के रूप में दिए गए हैं, और उनका अर्थ भी बहुत स्पष्ट है, मारे गए चट्टान से पानी का निकलना। मित्रों, जब इसराइली रेगिस्तान में से होकर जा रहे थे, तब उन्हें प्यास लगी और वे फिर से कुड़कुड़ाने लगे। हम निर्गमन की पुस्तक उसके 17 अध्याय और उसके 1-3 पद में पढ़ते हैं, फिर इसराइलों की सारी मंडली सीन नाम जंगल से निकल चली और यहोवा के आज्ञानुसार कूच करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए, और वहां उन लोगों को पानी पीने को न मिला। इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे कि हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी, तब वे यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे कि तू हमें लड़के वालों और पशुओं समेत प्यासे मार डालने के लिए मिस्र में से क्यों ले आया है। मित्रों, इसराइली हमेशा शिकायत करने वाले लोग थे, उन्हें पानी की आवश्यकता थी और वे शिकायत करना आरंभ करते हैं, परंतु परमेश्वर अनुग्रह से उनकी प्रत्येक जरूरतों को हमेशा पूरा करते हैं। लेकिन उसी बीच में कुछ और बातें सामने आ जाती है, और वे चिल्लाने और शिकायत करने और गलतियां ढूंढने लगते हैं। मित्रों, आज बहुत सी कलीसियां ऐसी ही स्थिति में हैं, परंतु उन्हें लगता है कि वे बहुत अच्छी स्थिति में हैं। हम निर्गमन 17 उसके 4 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों से मैं क्या करूं, ये सब मुझे पत्थरवाह करने को तैयार हैं। मित्रों, इस समय तक मूसा अपना कार्यभार किसी दूसरे को देने के लिए तैयार था। मूसा को अब इसराइलियों के कुड़कुड़ाने से अलग कर दिया गया था, और अब यहां पर इसराइल के लिए परमेश्वर के प्रबंध को आप देखें। हम निर्गमन 17 उसके 5 में पढ़ते हैं, लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने नील नदी को मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। मित्रों, यह वही लाठी है जिसे मूसा को दी गई थी जब वह फिर से मिस्र देश में गया था, और यह मूसा के सामर्थ्य और प्रभुत्व का प्रतीक था। हम निर्गमन 17 उसके 6-7 पद में पढ़ते हैं, देख मैं तेरे आगे चलकर होरे पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना, जब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिएंगे। तब मूसा ने इसराइल के वृद्ध लोगों को देखते वैसा ही किया, और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इसराइलियों ने वहां वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा यह कहकर की कि क्या यहोवा हमारे बीच है वा नहीं। मित्रों, यहाँ पर चट्टान और उससे निकले पानी का पहला वर्णन मिलता है, और यहाँ पर चट्टान किसको दर्शाता है? मित्रों, इसके लिए हमें अनुमान करने या अपना अंदाज लगाने या अपनी बुद्धि का प्रयोग करने के लिए नहीं छोड़ दिया गया है, परंतु परमेश्वर का आत्मा पहला कुरिन्थियों के पत्र 10 अध्याय उसके 1-4 पद में इसका वर्णन करता है, जो हमें बताता है कि हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। मित्रों, इसराइलियों ने जो रोटी खाया वह मन्ना था और वह मसीह का प्रतीक था जो जीवन की रोटी है। मसीह जीवन का जल भी है और चट्टान उसका प्रतीक है। यह लोगों के अविश्वास के विपरीत था कि लोग उसे सिर्फ एक मजबूत चट्टान समझ रहे थे। आप यहाँ पर देखिए कि उन्होंने परमेश्वर पर संदेह किया। इस तरह से इसराइली टूटे हुए सरकंडे और मकड़ी जाल पर दबाव डाल रहे थे और इसी संदेह के एक छोटे से बादल के कारण परमेश्वर का चेहरा उनसे छिप रहा था। मित्रों, चट्टान प्रभु यीशु मसीह का एक सुंदर चित्रण है। हम भजन संहिता 61 उसके 2 पद में पढ़ते हैं, मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा, जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल। वह मसीह है। और भजनकार भजन संहिता उसके 78 के 35 में फिर से आगे कहता है, और उनको स्मरण होता था कि परमेश्वर हमारी चट्टान है और परम प्रधान ईश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। मित्रों, तब इस विषय में पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 6-8 पद में वह कहता है, इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है कि देखो, मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। सो तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया, क्योंकि वे तो वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। मित्रों, अंत में प्रेरित पौलुस पहला कुरिन्थियों के पत्र 3 अध्याय उसके 11 पद में हमें सलाह देते हैं, क्योंकि उस नेव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नेव नहीं डाल सकता। मित्रों, एक भजन में प्रभु यीशु को निढाल भूमि में का एक चट्टान कहा गया है। यद्यपि यह नींव के रूप में उसका एक अद्भुत तस्वीर है जहां पर हम विश्राम कर सकते हैं और उसी के ऊपर कलिसिया स्थापित की गई है। मित्रों, यहां पर पानी पीने के लिए हमारा आखिरी विकल्प चट्टान ही होता है। मेरे कहने का मतलब यहां पर विनोदशील होना नहीं है, परंतु यह कहना है कि आप उस चट्टान से कड़वा पानी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह तो शलगम से खून निकालने या दरवाजे के मुठ से संतरा का रस निकालने के जैसा है। यह सच है कि आप चट्टान के उत्तम गुण, उसकी टिकाऊपन की प्रशंसा कर सकते हैं और इसे कई महान सीख सकते हैं, पर आप उसे चख कर इसका मूल्यांकन भी कर सकते हैं, परंतु आप इसे पी नहीं सकते हैं। मित्रों, प्रभु यीशु एक चट्टान है, परंतु उनका सुंदर जीवन और टिकाऊपन आपको नहीं बचा सकता है। उनकी शिक्षाएं आपकी आत्मा का उद्धार नहीं करेगी। उसका जीवन और शिक्षाएं एक चमकाए गए संगमरमर की तरह है जिसे चमकाया गया है। यद्यपि आप उसे अपने जीवन में करंट के साथ या चश्माकार के कठोर या खुरदरापन को लागू करते हैं, फिर भी वे आपको नहीं बचाएंगे। हो सकता है कि प्रभु यीशु के द्वारा सिखाए गए सिद्धांत आपको थोड़ा चमकाए, परंतु वह अभी भी वही चट्टान है जिसके विरोध में आप अपने पैर से ठोकर खा सकते हैं या उससे अपना पैर टकरा सकते हैं। मित्रों, प्रभु यीशु जो एक चट्टान है और आप उद्धार के लिए उस पर गिर सकते हैं, परंतु कोई भी मानवीय प्रयास इस चट्टान से पानी नहीं निकाल सकता है। जब इस चट्टान पर मारा गया तो इसमें से जीवन देने वाली पानी की धारा बह निकली। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया और इस पर विश्वास करने के अतिरिक्त कुछ नहीं है कि वह आपके बदले में मरा और आपके पापों को अपने ऊपर क्रूस पर ले लिया, और वही आपको उद्धार दे सकते हैं। मित्रों, चट्टान पर मारना यीशु मसीह की मृत्यु का एक चित्रण है। हमें गिनती की पुस्तक में बताया गया है कि इसराइल के संतानों ने दूसरी बार शिकायत की कि उनके पास पीने के लिए पानी नहीं है। पहली बार जब इसराइली प्यासे हुए तो वे कुड़कुड़ाने लगे, और तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि उस चट्टान पर मारे और पानी की धारा बह निकली। जो भी हो, गिनती की पुस्तक में परमेश्वर मूसा को अलग निर्देश देते हैं। गिनती 20 अध्याय उसके 8 पद में परमेश्वर मूसा से कहते हैं, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। मित्रों, मूसा को सिर्फ उस चट्टान से बात करने के लिए कहा गया, क्योंकि चट्टान पर पहले ही मारा जा चुका था। यीशु मसीह 2000 साल पहले क्रूस पर चढ़ाए गए, और जब उसने क्रूस पर से कहा पूरा हुआ तो वास्तव में यह पूरा हो गया था। इसलिए अब यीशु मसीह को दोबारा क्रूस पर चढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। यीशु ने जो कुछ आपके लिए किया है उससे परमेश्वर संतुष्ट हैं। अब प्रश्न यह है कि क्या आप यीशु मसीह के कार्य से संतुष्ट हैं जो उसने आपके लिए क्रूस पर किया है। मित्रों, वह आपको बचाने के लिए मरा और परमेश्वर आपसे सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आप उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। मित्रों, चट्टान से जो यीशु मसीह है, आज आत्मिक आशीष निकलती है और आशीष की पानी बहकर सूखे होंठ को आराम पहुंचाती है। इफिसियों की पत्री 1:3 हमें जानकारी देती है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। मित्रों, चट्टान पर एक बार मारा गया और इसमें से पानी प्रचुरता में निकलती है। इसका सोता लबालब है, धारा किनारे तक भरा हुआ है। संसार इसे नियंत्रित नहीं कर पा रही है, परंतु इसके बावजूद भी बहुत से लोगों के हृदय मुरझाए हुए हैं और उनकी जीभ झुलसी हुई है। लाखों लोग आत्मिक प्यास की चाह में मर रहे हैं। नहर बंद कर दिया गया है, संदेह के बोटा द्वारा इसे जाम कर दिया गया है, पाप के द्वारा नष्ट किया गया है और महत्वहीनता के द्वारा इसे अलग किया गया है। मित्रों, नहर भी उन लोगों के द्वारा बांध दिया गया है जो लोग यह दिखावा करते हैं कि वे मसीह को जानते हैं, परंतु वे वास्तव में उसे नहीं जानते हैं। मित्रों, जब मैं इसके बारे में देखता हूं तो मैं बहुत व्याकुल और दुखी होता हूं। संसार प्यासा है। आज मैं आपसे विशेष रूप में और व्यक्तिगत रूप से पूछना चाहता हूं, क्या आप उस मारे गए चट्टान के पास जीवन का जल पीने के लिए आए हैं? परमेश्वर कहते हैं कि यदि आप उस जल में से पिएंगे तो कभी भी प्यासे नहीं होंगे। आगे हम देखते हैं अमालेकियों के साथ विवाद। मित्रों, हम देखते हैं कि इसराइलियों की यात्रा के दौरान वे अमालेकियों के बीच में गए, जो पवित्र शास्त्र में संसार को दर्शाते हैं। मित्रों, यह अनुभव हमारे लिए एक और शिक्षा है जिसे हम और अच्छी तरह से आगे सीखेंगे। तब अमालेकी आकर रपीदीम में इसराइलियों से लड़ने लगे। मित्रों, इस बात को ध्यान दें कि अमालेकी लोग एसाव के वंशज थे। एसाव शरीर या संसार का एक प्रतीक था और अमालेकी लोग इसराइलियों के शत्रु बन गए थे। वे इसराइल का शत्रु होने से कभी भी पीछे नहीं हटे, अर्थात बंद नहीं किए, और पहली बार इसराइल की संतान ने युद्ध में भाग लिया। हम निर्गमन की पुस्तक 17:8-10 में पढ़ते हैं, तब अमालेकी आकर रपीदीम में इसराइलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई एक पुरुष को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। मित्रों, एसाव शरीर को दर्शाता है। जैसे कि इसराइली अपनी ताकत से अमालेकियों पर प्रबल नहीं हो पाए, ठीक वैसे ही आप और मैं भी इस संसार को अपनी ताकत से नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि देह अर्थात शरीर आत्मा के विरोध और आत्मा देह के विरुद्ध लड़ता है। पौलुस इसे गलातियों के पत्री 5:17 में अच्छी तरह से वर्णन करते हैं, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। मित्रों, यही तस्वीर हम इस निर्जन प्रदेश में भी पाते हैं, जहां पर इसराइली और अमालेकी हैं जो एक दूसरे के विरोध में लड़ रहे हैं। हम आगे निर्गमन 17:11-12 में पढ़ते हैं, और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इसराइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता तब तब अमालेक प्रबल होता था, और जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक आलंग में उसके हाथों को संभालते रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। मित्रों, इसको ध्यानपूर्वक देखने से पता चलता है कि यह लड़ाई वास्तव में पहाड़ के ऊपर लड़ी गई थी। यह प्रार्थना के द्वारा लड़ी गई थी। यह युद्ध इसराइलियों का युद्ध कला के द्वारा नहीं जीती गई, क्योंकि वे एक अनुभवी सैनिक नहीं थे और वे न अब तक युद्ध में निपुण थे। यह युद्ध मूसा के द्वारा लड़ा और जीता गया, और जैसे ही मूसा अपने हाथों को उठाए रखने में असमर्थ हुआ, इसराइली हारने लगे। इसलिए यदि यह मूसा के लिए नहीं होता तो इसराइली इस युद्ध में हार जाते। एक विशेष बात जिसे याद करने की आवश्यकता है कि केवल पवित्र आत्मा ही हमें शरीर पर विजय दिला सकता है। जब एक विश्वासी आत्मा के अनुसार चलता है तो वह विजयी होता है। मित्रों, जब मैं और आप आत्मा से अलग होकर स्वतंत्र रूप से काम करते हैं तो अमालेकी या शरीर सरलता से विजयी हो जाते हैं। आप देखें कि जब तक मूसा का हाथ उठा रहा, इसराइली जीतते रहे, अर्थात विजयी हुए। आप और मैं कभी भी शरीर पर विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। यह सिर्फ परमेश्वर का आत्मा ही है जो इस पर विजय दिला सकता है। हम निर्गमन 17 उसके 13 और 14 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। मित्रों, अब समय है कि रुककर इस व्यक्ति यहोशू पर थोड़ा ध्यान दे जो मूसा के स्थान को लेने पर है। हम देख सकते हैं कि वह इस जिम्मेदारी को लेने या संभालने के लिए तैयार हो चुका है। वह एक साधारण व्यक्ति है, परंतु परमेश्वर उसे एक विशेष उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं जो उसके सामने आने वाला है। परमेश्वर ने मूसा को निर्देश दिया कि वह यहोशू के कान में इस बात को अच्छी तरह से बता दे कि अमालेकी नाश किए जाएंगे। अब परमेश्वर शरीर से अर्थात देह से छुटकारा पाने जा रहे हैं। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब परमेश्वर अपनी कलीसिया को स्वर्ग में ले जाएंगे तब वह इसे बदल देंगे। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय उसके 52 पद में इसे स्पष्ट किया गया है, और यह क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठा लिए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। मित्रों, यदि परमेश्वर कलीसिया को बिना बदले ही स्वर्ग में ले जाते हैं जैसे कि वह अभी है, तो स्वर्ग भी इस पुराने पृथ्वी की तरह हो जाएगी, क्योंकि हम अपने पुराने स्वभाव में उस स्थान को बिगाड़ देंगे। मैं भी अपने पुराने स्वभाव को कई वर्षों से एक लाश की तरह खींच रहा हूं। मैं इसे छुटकारा पाना चाहता हूं और मैंने कोशिश भी की, परंतु यह स्वयं से बार बार इसे बलपूर्वक बनाए रखता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने वायदा किया है कि वह हमारे पुराने स्वभाव को एक दिन बदल देंगे, अर्थात हमारे पुराने स्वभाव से छुटकारा देंगे। वे लोग जो मसीही हैं या मसीह के हैं, एक दिन वे बदल जाएंगे और स्वर्ग राज्य में रहने के लिए ठीक किए जाएंगे। मित्रों, हम निर्गमन 17 उसके 15 और 16 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निशी रखा और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। मित्रों, यहां पर तीन मुख्य बातें हैं जिसे याद रखने की आवश्यकता है। पहली बात, परमेश्वर अमालेकी से छुड़ाने जा रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि परमेश्वर पुराने स्वभाव से छुटकारा दिलाने जा रहे हैं। और दूसरा है, परमेश्वर कभी भी पुराने स्वभाव के साथ समझौता नहीं करेंगे, वह पीढ़ी दर पीढ़ी अमालेकी से युद्ध करेंगे। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि यह अपरिवर्तनीय युद्ध चलता ही रहेगा जब तक हम इस दुनिया में और इस शरीर में जीवित हैं, क्योंकि शरीर और आत्मा हमेशा एक दूसरे के विरोध में युद्ध करेंगे। मित्रों, हमें इस सत्य को मान लेने की आवश्यकता है कि केवल परमेश्वर का पवित्र आत्मा ही हमें विजयी बना सकता है या विजय दे सकता है। परंतु प्रश्न उठता है कि क्या आप इसे मानने के लिए तैयार हैं कि सिर्फ परमेश्वर का आत्मा ही हमें हमारे शारीरिक स्वभाव से छुटकारा दिला सकता है। मित्रों, यह वास्तव में एक गंभीर विषय है और हमें बड़ी गंभीरता के साथ सोचना और निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि इस संसार में हम देखते हैं कि लोग अपने पुराने और बुरे स्वभाव से छुटकारा पाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पौलुस दूसरे कुरिन्थियों के पत्र 5 अध्याय उसके 17 पद में कहते हैं, यदि कोई मसीह में है तो वह एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब नई हो गई है। जी हाँ, मसीह में सब बातें नई हो जाती है, क्योंकि मसीह ने पुराने स्वभाव को क्रूस पर पराजित कर दिया है और वही आपको नया स्वभाव दे सकते हैं। आज आप अवश्य ही थोड़ा समय लेकर इस पर विचार करें। मित्रों, आज हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए हम इन्हीं विचारों के साथ आपसे विदा चाहते हैं और मैं विश्वास करता हूं कि निश्चित रूप से इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिला है। प्रभु आप सबों को अपनी आशीष व शांति प्रदान करें।
ये दुनिया है ख्वाब सुनहरा, इसमें जो फंस जाए। ये दुनिया है ख्वाब सुनहरा, इसमें जो फंस जाए। रोए तड़पे चैन न पाए, घुल घुल के मर जाए। मन का मैल धुला, मन का मैल धुला, ख्वाबों में जो खोया है जा जरा मत वाले, ख्वाबों में जो खोया है जा जरा मत वाले। अपना मीत बना ले, यीशु को तू अपने जीवन में अपना मीत बना ले। छोड़ दे ये दुनिया है सुनहरी, दुनिया से मन फिरा ले, होगा तेरा भला, होगा तेरा भला, ख्वाबों में जो खोया है जा जरा मत वाले, ख्वाबों में जो खोया है जा जरा मत वाले, जा जरा मत वाले, जा जरा मत वाले।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओं, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
मेरे गुनाहों को धो दिया, अपने बदन का लहू दिया, मेरे गुनाहों को धो दिया, अपने बदन का लहू दिया। प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा, प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा। लोगों से घोड़ों की मार सहा,
आज तलक ना